તારીખ 26/7/1997 ડાયરીના બોલ નંબર 46 49 84 અને 85 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 98
साधक को स्वरूप के अभेद वेदन की परिणति बाह्य संयोग की प्रवृत्ति काल में भी भिन्नपना का साक्षात कारण है। क्या कहा कि जो साधक जीव है, ज्ञानी है, उसको स्वरूप का अभेद वेदन की परिणति होती है ज्ञान धारा। तो बाह्य संयोग की प्रवृत्ति में भी उसको भिन्नपना रहता है, इसका यही कारण है। सामान्य संसारी प्राणी को उदय की बाह्य प्रवृत्ति में तन्मयता हो जाती है, एकाकारता हो जाती है, एकत्व बुद्धि होने से। साधक जीव को, ज्ञानी को, अपना स्वरूप का अभेद वेदन परिणति में चलता है तो बाह्य प्रवृत्ति में उसका भिन्नपना रहता है, इसका साक्षात कारण वो परिणति है। वहां स्वरूप रस, चैतन्य रस की मुख्यता बहुत है। कहां तो परिणति है वहां। वो जो ज्ञान धारा है उसमें स्वरूप रस है, उसकी मुख्यता बहुत है, यही प्रधान परिणमन है। अतः परद्रव्य और परभाव में सहज अत्यंत निरसता हो जाती है, निरसता करनी पड़ती नहीं। संसार में तो अमृतचंद्र आचार्य ने एक श्लोक बनाया है, कलश बनाया है, ज्ञानी है वो तो सहज वैरागी होते हैं। क्यों? क्यों उसका रस आत्मा में है, आत्मरस की परिणति चलती है, इसलिए अन्य उदय में उनको तीव्र रस आता नहीं, भिन्नता सहज रह जाती है, इसलिए रस नहीं आता। यही विरक्ति है। भले चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ज्ञानी को अविरत संयोग दृष्टि बोला जाता है, फिर भी उसकी विरक्ति, निरसपना जब से परिभ्रमण की वेदना चालू हुई है तब से चालू हो गई है और उत्तर उत्तर बढ़ती जा रही है। ज्ञान दशा में तो बहुत है, फिर भी भगवान ने चतुर्थ गुण स्थान का नाम अविरत संयोग दृष्टि दिया। दंसों मूलो धम्मो करके अपने एक किताब निकाली है, उसमें इस विषय पर थोड़ी चर्चा किया है कि ऐसे देखा जाए तो सम्यक दृष्टि की महिमा ग्रंथ ग्रंथों में सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दृष्टि की महिमा आचार्यों ने भी की है, फिर अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा टाइटल, ऐसा विशेषण इनको क्यों दिया जाता है, ये क्यों दिया है शास्त्र में, वो तो चतुर्थ गुण स्थान का नाम, चौदह गुण स्थान का नाम अनादि से है, नाम नहीं बदलता, पंच परमेष्ठी का नाम नहीं बदलता, ऐसे चौदह गुण स्थान का नाम नहीं बदलता। ऐसा क्यों? एक ओर से प्रशंसा करी जाती है, दूसरी ओर से अवगुण वाचक विशेषण लगाया जाता है। अविरति तो कोई गुण नहीं है, अवगुण है, ज्ञानी को ऐसा अवगुण का विशेषण क्यों? उसमें तो गुण की विशेषताएं बहुत है, गुण प्रकट किया है, आत्मगुण प्रकट किया है, फिर अवगुण वाला नाम क्यों दिया गया शास्त्र में? इसकी चर्चा की है हमने, तो वहां वो चर्चा की है कि ऊपर के गुणस्थान की बराबरी में, कंपैरिजन में ये बात लिखी गई है, पंचम गुणस्थान में और छठवें सातवें गुणस्थान में। मैंने श्रावक के गुणस्थान में और मुनिराज के गुणस्थान में जो पुरुषार्थ है और जो गुण प्रकट होते हैं उनकी बराबरी में ये बहुत अल्प होने से उसको अविरत ऐसा नाम दिया गया है, क्योंकि वहां बाह्य त्याग होता नहीं। चतुर्थ गुणस्थान धारी को बाह्य त्याग होना जरूरी नहीं है, फिर भी विरक्ति बहुत है, रस नहीं है कहीं भी। तो ये बात ऊपर के गुणस्थान को दिखाने के लिए है, नीचे वाले को वो नहीं देखना है। तो ऊपर वालों की दृष्टि से वो बात है, नीचे वालों की दृष्टि से ये बात नहीं है। जो नीचे वाले हैं उनको अपने स्थान में रहना चाहिए, नीचे वाले को अपने स्थान में रहना चाहिए। जैसे गुरु भले ही अपने को गुरु नहीं माने लेकिन शिष्य को तो अपने स्थान में रहना चाहिए। शिष्य अगर ऐसा कह दे कि आप गुरु नहीं है मेरे, निश्चय से कोई किसी का गुरु शिष्य होता ही नहीं है, तो वो बात अनुचित है। निश्चय से ऐसा होने के बावजूद भी ये बात अपने स्थान में उचित नहीं है, अनुचित है। तो एक बात के कई पहलू होते हैं, कभी किस पहलू से बात चलती है वो समझ में आए तो कोई आपत्ति नहीं, वरना बात कोई दूसरे ढंग से समझ में आ जाएगी, उल्टी सुलटी समझ में आ जाएगी। जिसकी परिणति स्वरूप रस से भीगी हुई है, जिसकी आत्म परिणति आत्म रस से भीगी हुई है, जिसको मात्र स्वरूप का ही ध्येय है और कोई ध्येय नहीं है, इसलिए उसका ध्यान वहीं लगा रहता है, और वेदन प्रकट हुआ है, ऐसे साधक को पूर्व कर्म यानी पूर्व कर्म के संस्कार से परद्रव्य के विषय में परपणा से प्रवृत्ति होते हैं तो उसमें भी अत्यंत निरस्त पड़ा रहता है। उसको पूर्व संस्कार के कारण से या पूर्व कर्म के कारण से परद्रव्य के अनुसार प्रवृत्ति होती है और विकल्प भी होता है परद्रव्य के अनुसरण करके, तो उसमें रस नहीं होता है। क्यों? कि उसका ध्येय, उसका वेदन और उसका जो रस है, उसका केंद्र स्थान अपना आत्मस्वरूप है। जो आत्मस्वरूप सर्वथा निर्विकार है और सर्वथा निरुपाधिक है, उपाधि भाव स्वरूप में है, ऐसे आत्मस्वरूप से भीगी हुई परिणति है, ऐसा स्वरूप रस से भीगी हुई बिंजायेली परिणति है, तो उसको कहीं होता है प्रवृत्ति होती है लेकिन कहीं रस आता दोनों वो निरस्ता के थे
जी।
मित्र आदि परिवार के संयोग की मिठास, मिठास को मिठास ही कहते हैं इंद्र, ज्ञानी को उत्पन्न नहीं होते, आधार बुद्धि नहीं है। संसारियों को आधार बुद्धि होती है कि मेरे इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने सपोर्टर हैं, मित्र हैं, मैंने मेरे को सपोर्ट करने वाले हैं, मेरी तरफदारी करने वाले हैं, तो उनकी मिठास उनको आती है। ज्ञानी को मिठास नहीं आते क्योंकि उसको किसी और के प्रति आधार बुद्धि नहीं होती। क्योंकि सम्यक ज्ञान में दूसरे सभी जीव मात्र चैतन्य मूर्ति देखने में आते हैं, देव दृष्टि होने से सभी जीव को चैतन्य मूर्ति देखते हैं, तो चैतन्य मूर्ति आत्मा ही आत्मा है, सब चैतन्य मूर्ति है। उनके देहादि पुद्गल इतने गौण हो जाते हैं, इतने गौण हो जाते हैं कि मानो दिखते ही नहीं, उनको तो आत्मा ही आत्मा दिखते हैं। पर्याय दृष्टि में देहादि दिखते हैं, आत्मा नहीं दिखता, और द्रव्य दृष्टि में देहादि नहीं दिखते, आत्मा दिखते हैं। शरीर आदि नहीं और प्रकृति भी नहीं, ये सम्यक ज्ञान की विशिष्टता है। आनंद घन जी ने तो बहुत अच्छा एक पद बनाया है कि प्रभु तुम जान दे रीति, भगवान आपकी जानने की रीति कुछ और है। कैसी है? कि आप सबको शुद्ध चैतन्य स्वरूप से ही देखते हो, सारे जगत को प्रभु तुम जानग रीति सब जगत देखता हो लाल, शुद्ध सत्ताए सब ने पहखता हो लाल। आप तो सबको शुद्ध चैतन्य मूर्ति देखते हो। ये जिनेन्द्र की जानने की पद्धति है, वही पद्धति ज्ञानी को सम्यक ज्ञान में जानने की पद्धति है। दोनों के जानने की रीति एक सी है। बैंसरी के वचनामृत में आता है, कोई कैसा भी हो, अपने को चाहे मित्र माने चाहे अपने को शत्रु माने, तो अपने में अपने आप को कुछ भी माने और हमारा शिरच्छेद करने वाला भले ही हो, हम तो सभी को सिद्ध स्वरूप ही देखते हैं। हम किसी को मित्र शत्रु देखते हैं, सबको सिद्ध स्वरूप देखते हैं। हमारे लिए सब सिद्ध परमात्मा है। किसके प्रति बुरा लगाए, सब सिद्ध परमात्मा है। हाँ, उनको किसी का बुरा लगाने का कोई कारण नहीं है। वो अपने आप को भले ही कुछ भी माने, इसका बोझा हमें नहीं लेना है। तो वो ऐसा मानता है, वो ऐसा मानता है कि वो मानता है, उसका बोझा उनके ऊपर है। हमारे गुजराती में कहावत है, भैंसना सिंगड़ा भैंस ने भारे। तो भैंसा होती है, बड़े बड़े सिंग होते हैं, तो उसका वजन किसको लगता है? उसको ही लगता है। इसका वजन कोई बड़े हो, कितना बड़ा बड़ा सिंग है, कितना वजन होगा? अरे भाई होगा तो उसको धोना है, तुमको क्या है? इसका वजन तुमको तो आएगा नहीं। तो किसी की उपाधि हमें करनी है, ज्ञानी निश्चिंत है, किसी की उपाधि नहीं करते, निश्चित रूप से सोते हैं, बस आराम। किसी का विकल्प नहीं करेंगे, क्यों? ये सब उपेक्षा का, उदासीनता का विषय है। जो भी जिसकी योग्यता अयोग्यता हो, उसके विषय में खुद उदासीन है कि मेरे को क्या लेना देना है। इसलिए दूसरी बात दिखती ही नहीं, सब चैतन्य मूर्ति दिखते हैं और कुछ दिखता नहीं है। साधक की पर्याय का विकारांश स्वभाव के भान, स्वभाव के भान रूपी लगाम में, लगाम को लगाम ही बोलते हैं, लगाम में होने से अत्यंत मर्यादा में है। स्वभाव का भान है मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, तो विकार अंश उत्पन्न होता है, विकार का अंश उत्पन्न होता है, वो तो मर्यादित हो जाता है, क्योंकि तो उसमें लगाम है, कंट्रोल है। स्वभाव का भान है, वो लगाम है इसके पर, वो तो अमर्यादित रूप से भगता नहीं। अत्यंत मर्यादा में है, उसका एक कारण वो भी है स्वभाव के भान का, दूसरा कारण वो भी है कि कोई अन्य पदार्थ वास्तव में सुख का कारण नहीं, कोई दुख का कारण नहीं, तो सुख दुख से खाली दिखता है, इसलिए उस पर जोर आता नहीं है। सुख दुख का कारण मान ले तो मर्यादा नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको सुख से भी खाली दिखता है और दुख से भी। ये सौधर्म इंद्र होते हैं ज्ञानी, तो इंद्रासन पर, इंद्रासन में सुख नहीं देखते, उसका इंद्रासन बहुत सुशोभित होता है, लेकिन उसमें उसको सुख नहीं दिखता। उपयोग जितना जाता है उसमें आकुलता का अंश उत्पन्न होता है, वो मालूम होता है कि ये दुख है। सुख तो है ही नहीं, लेकिन जितना उपयोग जाता है उतना दुख है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करता है। आकुलता का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यहाँ तो कोई 5-10 लाख की अच्छी गाड़ी होगी ना, तो भी दिमाग चढ़ जाता है। सबके इतनी आवाज करती है कि माथा खराब होता है। देवलोक में तो अच्छा है, इनके जो व्हीकल्स होते हैं, आने जाने का साधन होते हैं, विमान होते हैं, उनको तो बहुत डिस्टेंस में जाना होता है ना, क्षेत्र भी बड़ा है, लेकिन वहाँ का विमान कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि वहाँ कोई तेल बेल पुराना मशीनरी होना है, पंखे वंखे होना कुछ है ही नहीं। देवी विमान में कोई ऐसा नहीं होता, नहीं तो कोई देवी विमान का शरीर धारण करता है, उसमें सब बैठ जाते हैं, ऐसे हवा में चल जाता है, आकाश जमीनी विद्या है। यहाँ तो ढुर भुर 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 आवाज होता है तो भी दिमाग चढ़ जाता है, कान में कॉटन लगाना पड़ता है। इतने पुण्य देवलोक जितने तो इधर पुण्य है ही नहीं, विमान है लेकिन पुण्य नहीं है। कहने का मतलब वो है कि जीव जब सुख दुख की कल्पना करता है तो उसका विभाव अमर्यादित हो जाता है, ये तात्पर्य है। जब कोई ज्ञानी तो दो साइड से ये बात नहीं है, अपनी ओर से स्वभाव के भान में है, सामने पदार्थ की ओर से सुख दुख से खाली है, दोनों बातें एक साथ है। इसलिए ये विभावंश अपनी मर्यादा में उत्पन्न होकर के कमजोर होता हुआ चला जाता है, रहता नहीं, टिकता नहीं, ये तो है ही क्षणिक, चला जाता है लेकिन कमजोर होता हुआ चला जाता है, बढ़ता हुआ नहीं जाता, अपने आप कमजोर हो जाता है, उसमें ताकत नहीं है। और ज्ञान बल बढ़ता जाता है, विभाव कमजोर होता जाता है और ज्ञान बल बढ़ता जाता है, यानी आत्म परिणति बलवान होती जाती है। एक परिणाम में दो अंश है, आत्म परिणति भी है और विभावंश भी है। विभावंश कमजोर होता जाता है, आत्म परिणाम बलवान होता जाता है। मुक्त भाव की मस्ती वास्तव में अलौकिक है, खरेखर अलौकिक है, क्यों? वो तो मुक्त है, तो मुक्त कोई प्रतिबंध नहीं, उसकी मस्ती भी बहुत रहती है। मैं मेरे में मस्त हूँ, मैं मेरे से परिपूर्ण हूँ और निरालंब निरपेक्ष हूँ, न किसी का अवलंबन मुझे जरूरी है, न कोई मेरे को अपेक्षा है, अपेक्षा नहीं होने से मस्त है। अपेक्षा जिसको होती है, जितनी होती है, जैसी भी होती है, उसमें दीनता आए बिना नहीं रहते। जो दीन हुआ वो हीन हुआ, दीन हुआ वो हीन हुआ। क्यों? अपेक्षा वृत्ति उत्पन्न है। मेरे बेटे को मेरे प्रति ऐसा होना चाहिए, मेरे परिवार वाले को मेरे प्रति ऐसा होना चाहिए, इस घर में मेरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, मेरा स्थान मेरा मान ऐसा होना चाहिए, बस खत्म। उतना दुख, जितनी अपेक्षा उतना दुख। यानी को अपेक्षा नहीं, क्यों कि मार में सुख बुद्धि नहीं। अपेक्षा तो सुख के कारण से होती है, ऐसा हो तो सुख, ऐसा नहीं हो तो दुख। मेरा सुख दुख का वो कारण नहीं है, न मुझे कोई बाह्य पदार्थ में सुख की कल्पना करनी है, न कोई दुख की कल्पना करनी है, क्योंकि कोई बाह्य पदार्थ सुख दुख देने में समर्थ नहीं, पर ये वस्तु स्वरूप में है ही नहीं, स्वरूप की मर्यादा के बाहर की बात। इसलिए हर हालत में मेरे में मेरे में हूं, और मेरे में मैं जिंदा हूं, बराबर जीवंत रहता हूं, पर पराधीनता नहीं, और वही मेरा जीवंत पना है। पराधीनता आई तो मैं हाथ गया। सुधानी जी, 70 लाख की आबादी में मैं अकेला सुखी हूं, क्योंकि मेरी परिणति अनंत शांति के पिंड के साथ अभेद है। शांति का प्रवाह, शांति का झरना उसमें से निर्जरते हैं, उसको बस मेरे आनंद में मेरी शांति में मैं हूं। मालूम है कि मनुष्य में संयोग मामूली है सब, और उनके तो बात काफी मामूली थी। वो भी मालूम है कि 5-25 साल इधर का है अभी, कितना 5-25 साल शेष जीवन का है। वो जैसा पूर्व कर्म है उसका कर्जा चुक्तू करने में बिता देना, हाँ उसमें क्या आपत्ति है। बाद में तो देवलोक में जाना होगा, उसकी भी हमें दरकार नहीं, तो इसकी दरकार क्यों करें। जब देवलोक के वैमानिक देव के अनुकूल संयोग मिलेंगे, इसके सामने भी हमको नहीं देखना है। ऐसे महात्मा होते हैं कि उनके स्वागत में महान स्वरूपमान देवांगनाओं नृत्य करती है, तो वहां वो पैदा होते हैं, यौवन अवस्था में पैदा होते हैं, बचपन में नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, वहां तो उसके स्वागत करने में देवियां आती है सब। तो इधर के जो स्त्रियां होती है वो कुछ नहीं है इसके आगे, क्योंकि वो तो 2 दिन खाएगी नहीं बीमारी में, तो देखो क्या हालत होती है। गुरुदेव कहते धान नु ढींगलू, 2 दिन धान नहीं मिला, देखो इसकी हालत, ऐसा मुंह हो जाएगा तेरा। हाँ ऐसा नहीं होता, बीमारी आती नहीं देवियों को, देव को बीमारी, देव देवियों को बीमारी आती नहीं। इसका नृत्य देख करके रोम रोम में उनको वैराग्य छूटता है, आसक्ति नहीं होती। ऐसे महात्मा वहां विराजते हैं, यहाँ से जो ज्ञानी जाते हैं वो ऐसे वहाँ विराजते हैं। क्यों सुख की कल्पना नहीं कहीं कहीं भी सुख की कल्पना नहीं। कल्पना दुखदायक है, चाहे सुख की हो चाहे दुख की, तो कल्पना दुखदायक है। इसलिए मुक्त भाव की मस्ती खरेखर अलौकिक है। दूसरों को ज्ञानी का ख्याल नहीं आता कि किस मस्ती में वो जीते हैं, इसका ख्याल जगत को नहीं आता कि ज्ञानी कैसे मस्ती में जीते।
Yeah.